शिट, इसे भी अभी बंद होना था। आज पहले ही स्कूल से निकलने में देर हो गई और अब ये एक नई मुसीबत सर पर आ पड़ी है। अब तो घर पहुंचने में और भी देर हो जाएगी। राधिका ने खींचते हुए अपना हाथ स्कूटी की सीट पर मार दिया। उसके चेहरे पर इस वक्त परेशानी, अफसोस और निराशा जैसे मिश्रित भाव मौजूद थे। शाम होने वाली थी, स्कूल से घर लौट रही थी वो, जब अचानक ही उसकी स्कूटी ने बीच रास्ते में उसे धोखा दे दिया। राधिका ने किसी तरह स्कूटी को घसीटते हुए सड़क के किनारे खड़ा किया, फिर अपना हेलमेट उतारकर उसने स्कूटी के हैंडल पर टांग दिया और बिखरे बालों को हथेली से पीछे करते हुए परेशान निगाहें आसपास घुमाने लगी। सड़क पर काफ़ी रश था, पर अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि दूर दूर तक उसे आसपास कहीं कोई गैरेज नज़र नहीं आ रहा था। किसी से मदद मांगना भी उसे अजीब लग रहा था। अफसोस और निराशा भरी सांस छोड़ते हुए उसने स्कूटी का हैंडल थामा और धीरे धीरे घसीटते हुए आगे बढ़ाने लगी। वहां से आती जाती गाड़ियों से लेकर पैदल चलते मुसाफिर तक उसे देख रहे थे और बरसात के बाद बढ़ती उमस के कारण राधिका कुछ ही देर में पसीने से तरबतर हो चुकी थी। अचानक ही एक बाइक उसके बगल में धीमी रफ्तार में चलने लगी। राधिका ने जिज्ञासावश निगाहें उस दिशा में घुमाई। ठीक उसी वक्त उस बाइक चलाते शख्स ने भी नजरें राधिका की ओर घुमाई और जैसे ही उनकी निगाहें एक दूसरे से टकराईं, दोनों के चेहरों पर आश्चर्य के भाव उभर आए। आप, दोनों ने एक साथ ही कहा। एक बार फिर वे चौंक गए। अब स्कूटी और बाइक दोनों ही ठहर चुके थे। जी मैं यहां से गुजर रहा था तो आप पर नजर पड़ी, पीछे से जानी पहचानी लगी तो सोचा एक बार देख लूं कि कहीं मेरा अनुमान ठीक तो नहीं, और देखिए दूर से भी बिल्कुल ठीक पहचाना मैंने आपको। राधिका तो सामने मौजूद माधव को फटी आंखों से हैरान परेशान सी देखती ही रह गई, जबकि माधव ने सौम्य मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए सहजता से जवाब दिया। राधिका पल भर को चकित सी उसे देखती ही रह गई। उसे अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने ये माधव ही खड़ा है और एक बार फिर इत्तेफाक से उसकी इन परिस्थितियों में उससे मुलाकात हो रही है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राधिका को कुछ पल लग गए संभलने में, तब तक माधव ने ही उसकी स्कूटी को देखते हुए सवाल पूछ लिया। कोई परेशानी है क्या? आप स्कूटी को घसीटते हुए लेकर जा रही थी, बंद पड़ गई क्या?
नहीं, मुझे शौक चढ़ा था अपनी स्कूटी के साथ पैदल वॉक करने का, तो सड़क पर निकल आई। ये जवाब राधिका के चंचल दिल से निकला था जो माधव को अपने सामने देखकर बुरी तरह खिंचा हुआ था, जैसे उसके मन के खिलाफ कोई अप्रिय घटना घटित हुई हो। अपने मन के भावों को छुपाते हुए राधिका ने गंभीरता से जवाब दिया। जी वो अचानक स्कूटी बंद पड़ गई, कितनी कोशिश करके देख ली पर स्टार्ट ही नहीं हो रही। राधिका ने संक्षेप में अपनी परेशानियों से बता दी। माधव ने अपनी बाइक को उसकी स्कूटी के आगे खड़ा किया और उतरकर उसके पास चला आया। आप जरा हटिए, मैं चेक करता हूँ। राधिका बिना कोई आनाकानी किए चुपचाप साइड हट गई और खामोशी से माधव को तकने लगी, जिसका पूरा ध्यान उसकी स्कूटी को चेक करने में था। अचानक एकदम से चलनी बंद हो गई? माधव की आवाज राधिका के कानों से टकराई और उसने सकपकाते हुए उस पर से निगाहें फेर ली। चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे किसी ने उसकी चोरी रंगे हाथों पकड़ ली हो।
नहीं, वो कुछ वक्त से चलने में नखरे कर रही थी पर स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन आज बंद हुई तो दोबारा स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। शुरू में हड़बड़ाते हुए जवाब देते वक्त उसकी जुबान कुछ लड़खड़ा गई, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। माधव ने उसकी बात सुनी, फिर निगाहें उसकी ओर घुमाते हुए भौंसे कोड़ते हुए उससे सवाल किया। तो क्या आप इसी बात का इंतजार कर रही थीं कि ये पूरी तरह बंद कब होगी? माधव का सवाल सुनकर राधिका चौंक गई और आंखें बड़ी बड़ी किए हैरान परेशान सी उसे देखने लगी।
हैं, कहना क्या चाहते हैं आप, मैं कुछ समझी नहीं।
मतलब ये कि जब पहले से स्कूटी दिक्कत दे रही थी तो आपने वक्त रहते उसे चेक क्यों नहीं करवाया? उसके पूरे तरह से बंद होने का इंतजार कर रही थीं कि आप, कि वो दम तोड़े तब आप उसे उसके डॉक्टर के पास लेकर भागेंगी? जाने उसने सवाल पूछा था या राधिका पर तंज कसा था। राधिका को तो ये ताना ही लगा था और अगले ही पल मुंह बनाए हुए तुनकते हुए उसने अपनी सफाई में आवाज भी उठा दी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सर्विसिंग के लिए जाने वाली थी, बस पिछले कुछ दिन इतने व्यस्त थे कि मुझे जाने के लिए वक्त नहीं मिला।
वक्त की बड़ी कमी रहती है आपके पास, लगता है कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहती हैं, और आपको ये सीखने की जरूरत है कि जो काम जरूरी है उसे वक्त नहीं है का बहाना बनाकर टाला नहीं जाता, बल्कि अपने बिजी शेड्यूल में से उसके लिए वक्त निकाला जाता है। एक बार फिर माधव ने व्यंग्य भरी निगाहों से उसे देखते हुए ताना दे मारा था। जाने बात स्कूटी के लिए थी या रेस्टोरेंट आकर मिलने के लिए, पर इस लम्हे में एक शिकायत सी झलकी थी उन गहरी स्याह निगाहों में। पल भर को मुस्कान अपने ख्यालों में उलझी, फटी आंखों से चकित सी उसे थकती ही रह गई। फिर नाक से कोड़ते हुए उसने बुरा सा मुंह बनाया और खींचते हुए बोली, आपको मदद करनी है तो कीजिए, अगर ऐसे ही बेवजह ताने सुनाने का इरादा है आपका तो जा सकते हैं आप। वैसे भी मैंने आपको नहीं कहा था मुझे देखकर रुकने, और ना ही मैं मदद मांगने आपके पास गई थी, जो आप मुझे ताने पर ताने मारे जा रहे हैं। मेरी परेशानी है, मेरी लापरवाही से हुई है, तो मैं खुद निपट लूंगी इससे, आपको मुझ पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त राधिका कुछ ज्यादा ही चिड़ी हुई लग रही थी, रुख पर गुस्से के साथ नाराजगी के भाव भी उभरे थे, शायद माधव का सुनाना पसंद नहीं आया था उसे, और अब मोहतरमा कुछ रूठी रूठी खफा खफा सी लग रही थी, जबकि वो खुद नहीं जानती थी कि किस हक और रिश्ते से माधव पर नाराज हो रही है। उसका यह अंदाज देखकर पल भर को माधव कहीं खोसा गया। कुछ सालों पुरानी धुंधी यादें एकाएक जहन में ताजा हो गईं और बेख्याली में लबों से कुछ शब्द आजाद हो गए। आज तक भी आप जरा भी नहीं बदली, गुस्सा नाक पर रहता है आपके, पल भर में भड़क जाती हैं, और जब किसी की बात पसंद न आए तो ऐसे ही रूठ कर आंखें छोटी छोटी किए गाल फुलाए खफा खफा से उसे घूरने लगती हैं। माधव के शब्द राधिका के कानों से टकराए और पल भर में उसके चेहरे के भाव बदल गए। खुद पर ही हैरत हुई कि कैसे सालों बाद वो किसी पर नाराज हो गई, और वो भी माधव पर, जिससे उसका कोई रिश्ता ही नहीं। कुछ पल वो अपने ही मन की उलझनों में खोई चकित सी उसे देखती रह गई, फिर जैसे ही उसे अपनी गलती का भान हुआ उसने सक पकाते हुए उस पर से निगाहें फेर ली। सॉरी, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, पर शायद आप मेरी बात पर नाराज हो गई, लेकिन मैंने आपको हर्ट करने के इरादे से बेवजह कुछ भी नहीं कहा था। लापरवाही हुई है आपकी तरफ से, और उसी लापरवाही के कारण आप आज इस परेशानी में फंस गई हैं। ध्यान रखना चाहिए था आपको। माधव का लहजा शांत था और चेहरे पर कोमल भाव मौजूद थे। काफी संजीदा लग रहा था वो। अपनी गलती का एहसास था राधिका को, सो अब की बार उसने उससे कोई बहस नहीं की और अपनी गलती स्वीकार ली। जी, आगे से ध्यान रखूंगी मैं। इंजन में खराबी है आपकी, तो ऑयल बदलना पड़ेगा, और जहां तक मेरा अनुभव है लगता है कि एयर फिल्टर की कंधा है, तो शायद उसे भी बदलना पड़े, और इसके लिए आपको स्कूटी को गैरेज तक लेकर जाना पड़ेगा। पर यहाँ तो दूर दूर तक भी कोई गैरेज नजर नहीं आ रहा, राधिका ने आसपास नजरें दौड़ाते हुए मायूसी भरे स्वर में कहा। उसके माथे पर पड़ी लकीरें उसकी परेशानी जाहिर करने लगी। आगे चलकर कुछ दूरी पर एक गैरेज है, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं स्कूटी को वहां तक लेकर जाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। आपके लिए इतनी दूर बंद स्कूटी को घसीट कर लेकर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
माधव ने उसकी परेशानी का हल खोजते हुए उसे हेल्प ऑफर की, और राधिका की परेशान निगाहें अब उसकी ओर घूम गईं। पर आपकी बाइक? उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप बस कुछ देर मेरी बाइक की रखवाली कीजिए, मैं स्कूटी गैरेज पर छोड़कर वापस आता हूँ, फिर बाइक और आपको साथ में ले जाऊंगा। माधव ने सहजता से इस परेशानी का भी हल सुझा दिया। राधिका असमंजस भरी निगाहों से उसे तकने लगी और हिचकिचाते हुए बोली, आप इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं मेरी? मेरी वजह से अपनी परेशानियां क्यों बढ़ा रहे हैं? दिल में छुपा सवाल लबों पर आ ठहरा था, जिसे सुनकर माधव के लबों पर सौम्य सी मुस्कान बिखर गई। अगर आपकी जगह और कोई भी इस वक्त ऐसी परेशानी में फंसा होता, तो इंसानियत के नाते मुझसे जितना बन पड़ता मैं उसकी मदद जरूर करता। फिर आप मेरे लिए कोई अनजान तो नहीं कि आपको प्रॉब्लम में देखकर भी अनदेखा करते हुए मुंह फेर कर अपने रास्ते चला जाऊं? और यकीन मानिए, आपकी मदद करने से मेरी कोई परेशानी नहीं बढ़ेगी, उल्टा मुझे तो खुशी होगी अगर मैं आपके कुछ काम आ सका तो। माधव का जवाब सुनकर राधिका टकटकी लगाए उसे तकने लगी। जहन में अब भी कई सवाल उठ रहे थे, पर लबों ने उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं दी। आप यहाँ रुकेंगे, मैं स्कूटी लेकर जाऊँ, इसे छोड़कर आपको लेने आ जाऊँगा, या अगर आपको बाइक चलाना आती हो तो आप मेरी बाइक से आ जाइए। राधिका को खामोश देखते हुए माधव ने ही बात छेड़ी, जिस पर राधिका ने स्वीकृति में सर हिला दिया। आप ले जाइए, मैं यहीं इंतज़ार करूँगी आपका, बस हो सके तो ज़रा जल्दी आइएगा, यहाँ बीच रोड पर ऐसे खड़ा होना थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। राधिका की असहजता और घबराहट भांपते हुए माधव ने हामी भरी और स्कूटी लेकर निकल गया। पीछे खड़ी राधिका खामोशी से उसे जाते हुए तब तक देखती रही जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। माधव को गए आधा घंटा होने वाला था, पर अब तक उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। वहां अकेले खड़ा होना राधिका को अजीब लग रहा था, हर आते जाते मुसाफिर उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। उसने माधव को फ़ोन करने के बारे में सोचा, तब याद आया कि उसका नंबर तो उसके पास है ही नहीं। बुझे मन से वो मायूस सी उस दिशा में टकटकी लगाई देखने लगी जहां माधव गया था, साथ साथ अजीब अजीब मुंह भी बना रही थी और मन ही मन खुद पर खींच भी रही थी।